ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चार अंतरिक्ष परियोजनाओं के बारे में लिए गए फैसलों के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। डॉक्टर वेंकटेश्वरन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार
डॉक्टर वेंकटेश्वरन। भारत ने चंद्रमा और मंगल के सफल मिशन के बाद अब शुक्र ग्रह यानी वीनस के बारे में, वहां के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके बारे में भी नए अंतरिक्ष परियोजनाओं के बारे में मंजूरी दी है। किस तरह से देखते हैं इसके दो आयाम, अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो ये कितना बड़ा कदम है और इसके साथ ही साथ ये कितनी नई संभावना यानी अपॉर्चुनिटीज को भी जगाता है?
वीनस का मिशन करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट चांद का मिशन या मार्स का मिशन, इसका कंपैरिजन में वीनस का मिशन बहुत कठिन है। क्यों? बिकॉज वीनस को चारों ओर हमारा ऑर्बिटर ऑर्बिट करने के समय एक समय सन का दिशा में होगा, सो उस समय हमारा ऑर्बिटर दैट इज स्पेसक्राफ्ट बहुत गर्म होगा। दूसरा सिर आने के समय फटाफट उसको टेम्परेचर नीचे चले जाएगा। उसका मतलब दैट ऑर्बिटर को टेम्परेचर का कंट्रोल करना बहुत कठिन है एंड एक बहुत सवाल है। ये सिर्फ नहीं है दैट उधर जाना भी, दर इज उसका पाथ तैयार करके जाना भी बहुत मुश्किल है। लगभग 8 साल के एक बार इस तरह से आपका एक विंडो आ जाएगा, वो विंडो में आप लॉन्च करना है। नेक्स्ट विंडो आ रहा है 2031 में, वो हम मिस कर दिया तो देन 8 साल और हम वेट करना पड़ेगा। सो ये है इसका एक बहुत सवाल का विषय है। इनफैक्ट वीनस के यान चलाना बहुत ट्राई नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी। बहुत कम यान गया है, ये एक इसरो ने लिया है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड वीनस को स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वीनस में धरती में अभी हम क्लाइमेट चेंज बोल रहा है ना, दैट इज वातावरण गर्म हो रहा है उस तरह से बोल रहा है ना, उसी तरह वीनस में वो चुका है उसका हिस्ट्री में। अभी वीनस का सरफेस में देखा तो लगभग 400-500 डिग्री टेम्परेचर, सो इस टेम्परेचर कैसा है उसका पीछे कारण क्या है करके हम पढ़ने के समय धरती में क्लाइमेट चेंज के बारे में हम गहरे से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए ये वीनस का मिशन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया ने इसके लिए स्पेशल प्रोब्स तैयार कर रहा है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए अल्ट्रावायलेट इमेजरी स्पेक्ट्रोस्कोप तैयार कर रहा है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी का मात्रा उसका एटमॉस्फेयर में कितना है वो मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा है। इस तरह से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंडियन रिसर्च सेंटर्स इसके लिए तैयार कर रहे हैं।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, शुक्र यानी वीनस, इसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पे भी कभी मानव बस्ती होती थी और काफी हद तक ये अर्थ यानी पृथ्वी के ही समान है, तो ऐसे में जो ये परिवर्तन हुए हैं, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये मिशन किस तरह से उसके बारे में नई नई जानकारियां जुटाने में सक्षम हो पाएगा और इससे हमारे अंतरिक्ष परियोजनाओं को कितना एक बहुत विस्तार मिलने की संभावना है?
बाकी प्लैनेट्स को हम धरती से भी थोड़ा थोड़ा हम रिसर्च कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकता है बट थोड़ा थोड़ा कर सकता है। बट वीनस को बारे में हम रिसर्च करना धरती से बहुत मुश्किल है। क्यों है? बिकॉज वीनस को सभी टाइम देयर इज क्लाउड कवर, वो पानी का क्लाउड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है, बहुत थिक क्लाउड है। सो उसको नीचे क्या है धरती से देखना बहुत असंभव है। सो इसका मतलब है दैट वीनस का ऑर्बिटर, एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस को ऊपर चारों ओर घूमने के लिए हम लॉन्च किया तो देन उससे हम थोड़ा थोड़ा वो क्लाउड कवर के पीछे क्या है, दर अंदर क्या है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सब हम अंडरस्टैंड कर सकता है। सी वीनस में दिस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आई मीन ऑफकोर्स वीनस वार्मिंग करके बोल रहा है, धरती का वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग हम बोलता हूँ, सो इसलिए हम बोल रहे हैं वीनस का वार्मिंग। वो वीनस का वार्मिंग कैसा हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों वो सस्टेन्ड रहा है बहुत साल तक, बहुत बिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स वो कंटिन्यू हो रहा है, वो क्यों कैसा उस तरह से हो रहा है, ये अंडरस्टैंड करना एक इम्पॉर्टेंट जरूरी बात है। बिकॉज ये अंडरस्टैंड करने से हम धरती में हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी हम ठीक से समझने के लिए हमको रास्ता मिलेगा। इसलिए वीनस का स्टडी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम प्लैनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वीनस ऑर्बिटर मिशन का तकरीबन जो खर्च बताया जा रहा है वो 1,236 करोड़ रुपए है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए सिर्फ जो स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान है उस पर ही खर्च किए जाएंगे। ये कितनी बड़ी संभावना जगाता है रोजगार के लिए और एक नया विजन या एक नया अवसर प्रदान करता है, क्योंकि भारत में फिलहाल निजी क्षेत्रों को भी अंतरिक्ष मिशन में शामिल किया गया है।
सो एक रूसी का बात है दैट ये मिशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट पूरा की पूरा इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार करेगा। वो तैयार करेगा का मतलब क्या है, उसको डिजाइन करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको सही तरह से वर्कआउट करना है, उसके बाद सैटेलाइट में रखना है। सिर्फ सैटेलाइट भेजना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सैटेलाइट में आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जाना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कितना ठीक से काम कर रहा है वो सब देखना है। ये करने में दरअसल ये इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ये करने में इंडिया का एक्सपर्ट लोग को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इस करने के समय हम बहुत यंग पीपल को ट्रेनिंग भी दे सकता है, एक्चुअली इस तरह से एडवांस इक्विपमेंट कैसा बनना है करके ट्रेनिंग भी कर सकता है। सो इस तरह से प्रोजेक्ट्स इनडायरेक्टली हमारा ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देता है, दैट इज हमारा ह्यूमन रिसोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी करने में एक उनका मौका मिलता है। नहीं तो इंडिया में उस तरह से नहीं होगा ना, उस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी को आप लर्न करना है तो डेवलप्ड कंट्रीज के उधर जाना पड़ेगा, बट इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी करने के ये एक बहुत मौका हमको देता है।
वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी VOM के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब और वहां की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, हम आगे बातचीत करेंगे कि भारत में जो रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल है भारत में, जिसके लिए भी अभी मंत्रिमंडल ने इसके लिए भी मंजूरी दी है, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन का NGLV है, इसके बारे में बताएं कि इसका भी जो एक परिकल्पना की गई है कि इसका संचालन और 2040 तक चंद्रमा पे भारतीय चालक दल उतरने की क्षमता विकसित करने की बात कर रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी तक हम इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती थी या तकनीक होती थी उस पर पूरी तरह से विदेशी तकनीक पे निर्भर थे, ये भारतीय तकनीक को कितना नया एक आयाम देने में साबित होगा।
आप इंडिया का लॉन्च व्हीकल का हिस्ट्री आप देखा तो हम शुरू किया एक छोटा सा रॉकेट, एक साउंडिंग रॉकेट, सिर्फ 10 किलो आपका सब्जी का वेट होगा ना उतना ही है, उसको ऊपर लेके जाएगा 10 किलो से हम शुरू किया। उसे हम लर्न किया कैसा रॉकेट को डिजाइन करना है, कैसा हम रॉकेट फ्यूल बनाना है, कैसा उसको कंट्रोल करना है, दिशा को कैसा नेविगेट करना है, इस तरह से बहुत चीज हम लर्न किया। वो लर्निंग फेज के बाद अभी हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ गया, PSLV LPM3 नहीं तो GSLV, ये दोनों हम बिल्ड कर दिया। PSLV को आप देखा तो लो अर्थ ऑर्बिट के कक्षा में लगभग 4000 किलो, 10 किलो से 4000 किलो, याद रखना
जी।
LVM3 8000 किलो, उसका मतलब है 4 टन 8 टन लेके जा सकता है। इससे हम कुछ तरीके से सैटेलाइट्स को उधर हम छोड़ सकता है, बट आपको ह्यूमन मिशन करना है, बाकी ग्रह के बारे में हम जानने के लिए उधर हम ह्यूमन को भेजना है, फॉर एग्जांपल मून में लैंड होना है, इस तरह से हम सोचा तो ये काफी नहीं, हमको बड़ा रॉकेट चाहिए, शक्तिशाली रॉकेट चाहिए, वो होगा दिस NGLV। ये NGLV 30 टन लो अर्थ ऑर्बिट को लेके जाएगा, सो उतना शक्तिशाली होगा। हम ये नहीं सोचना है दैट इज सिर्फ मून में लैंड होने के लिए ये NGLV यूज होगा, नहीं, हम अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहा है ना, मोस्ट लाइकली आपका प्रदेश में ये सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है, तो वो सैटेलाइट क्या है, वो 36,000 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट नहीं, 36,000 किलोमीटर के बाहर है, वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। उतना दूर में एक बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेकर जाना है तो हमारा पास एक बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए। आजकल हम क्या करता है, सैटेलाइट हम बनाता है बट लॉन्च बाकी देश का रॉकेट यूज करके हम करता है, बट विथ दिस NGLV हम पूरा की पूरा हमारा पैर में हम खड़ा हो सकता है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट NGLV का फर्स्ट स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज रीयूजेबल होगा, मतलब बार बार आप यूज कर सकता है। आजकल मोस्ट ऑफ अवर रॉकेट इज एक्सपेंडेबल, मतलब एक बार यूज कर दिया वो एम्प्टी शेल समुद्र में गिरेगा बस खत्म, बट हियर आप ये फर्स्ट स्टेज को बार बार यूज कर सकता है, इसका मतलब दैट इज पर किलो स्पेस में लेके जाने के लिए कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाएगा, लगभग 25% to 40% कॉस्ट कम हो जाएगा, ये है इसका महत्व पॉइंट।
ये बहुत बड़ी बात बताई कि इस तरह के जो रीयूजेबल यानी पुनः उपयोग करने वाले जो प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग व्हीकल है, इसमें अगर 25-40% तक की जो लागत आपने बताया कि वो कम हो सकती है, तो ये कितना बड़ा बूस्ट करेगा हमारे अंतरिक्ष स्पेस मिशन के लिए।
फॉरेन सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहा है, सो हम अभी कॉम्पिटिटिव रेट में दे सकता है ये यूज करें, तो देन आप मून का ह्यूमन को लेके जाना है उसके लिए आप यूज कर सकता है। अभी हम चंद्रयान 4 सोच रहा है ना, वो चंद्रयान 4 हम दो रॉकेट एक के पीछे एक लॉन्च करके चंद्रयान में लैंड होके रिटर्न होना है, दो रॉकेट यूज करना है। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली नहीं है, अमेरिका या रशिया एक रॉकेट से ही कर सकता है, बट विद दिस NGLV आप एक रॉकेट से कर सकता है। इस तरह से हमारा फ्लीट दैट इज बहुत छोटा रॉकेट SSLV से NGLV तक कितना भी आपका चाहिए उसका लिए होगा। आप भी सोचा होगा ट्रांसपोर्ट पे आप देखा तो क्या है, एक छोटा ट्रक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर है, काफी साइज में आपको चाहिए ना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप चलाना है तो
जी।
उसी तरह ये इसरो का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट कर देगा।
आपने ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि जिस तरह से भारत में एक रॉकेट के पीछे दूसरा, हमको ये शक्तिशाली जो रॉकेट बनाना था, तो इसके लिए ये जो प्रयोग है ये कितना आपको लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसके लिए नए अवसर यहाँ पे भी खुलेंगे? क्योंकि आपने बताया जो चंद्रयान 4 यानी मून मिशन जो 4 है, इसमें लैंडिंग करने के बाद वापस भी आना, अभी तक तो आमतौर पे माना जाता था कि अगर हमने चंद्रमा पे लैंड कर लिया, यहाँ वहां पे हमारे यात्री उतर गए या वहां पे हमारा लैंड रोवर उतर गया, तो हमने काफी हद तक नई चीजें सीख ली। लेकिन ये जो वहां पे रह के उसके बारे में बहुत सारे नई नई चीजें खोजना और फिर वापस आना धरती पे, ये कितना बड़ा कदम है?
आप देखा तो चंद्रयान 1 सिर्फ एक मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल ऑर्बिटर, उसका मतलब है चांद के पास जाके चांद को चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते 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 रहे। चंद्रयान 2 पार्शियल सक्सेस था, बट चंद्रयान 3 को आप देखा तो दो मॉड्यूल है, दैट इज चांद को चारों ओर घूमने के लिए एक मॉड्यूल, देन लैंड होने के लिए एक मॉड्यूल, सिर्फ दो मॉड्यूल है। बट अभी हम सोच रहे हैं ना चंद्रयान 4, उसमें चार मॉड्यूल होगा, नॉट दो तीन चार। चार क्यों है? एक है चांद तक लेके जाना ट्रांसफर मॉड्यूल, सेकेंड है लैंडर मॉड्यूल, लैंड होना है, लैंड होने के बाद उधर से मिट्टी वगैरह लेके चांद से ऊपर आना है ना, सो ऊपर आने के लिए एक मॉड्यूल है, ऊपर आने के बाद धरती में लैंड होना है ना उसके लिए एक मॉड्यूल है। इस तरह से चार मॉड्यूल होगा, सो इस चार मॉड्यूल को दो दो मॉड्यूल को एक एक रॉकेट धरती से लेके जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं
जी।
अभी तक कोई भी देश इस तरह से प्रयोग नहीं किया है। सी पहली बार हम चंद्रयान 1 लॉन्च करने के समय हम लोहा का लोहा काटता है करके बोलता है ना, उसी तरह ग्रेविटी को यूज करके, दैट इज हम धरती से पकड़ के रखता है ना ग्रेविटी
जी,
वो यूज करके हम धरती से बाहर होके मून के पास चला गया था। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक ग्रेविटी असिस्ट करके एक टेक्निक को इसरो यूज किया। उसी तरह इस चंद्रयान 4 में ये टेक्नोलॉजी वो डिसाइड कर रहा है ना, दो रॉकेट एक के पीछे एक जाएगा, स्पेस में जाके एक साथ जोड़ेगा। लाइक आप सोच लो कुछ ट्रेन एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, एक और ट्रेन दूसरा जगह से इस जगह आएगा, दोनों मिलके देन तीसरा जगह जाएगा ना, उसी तरह दैट इज स्पेस में इसको ज्वाइन करना है, धरती में नहीं, स्पेस में ज्वाइन करना है, तो कितना एक टेक्निकली चैलेंजेस सोच के रखना। सो वो करके हम चांद में लैंड होके उधर से मिट्टी वगैरह सैंपल कलेक्ट करके सैंपल धरती में वापस लेके आना है, इस तरह से एक प्लान बनाया है। अभी तक कोई भी देश इस तरह से छोटा रॉकेट करके इस तरह से प्लान नहीं किया है, सभी लोग बड़ा रॉकेट होने तक वेट किया है। हम इंडिया ने, इंडिया का इसरो ने, इसरो का साइंटिस्ट ने ये बोला है हमारा पास क्या है उससे हम क्या कितना तक चल सकता है चल के दिखाएंगे करके ये कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को इतने सरल और आसान शब्दों में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर TV वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।